Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse Number 9. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne se pehle Guru aur Gauranga se Kuppa ki yachna karte huye Mangala Charan karenge taki hum jo adhyayan kar rahe hain uska pura pura labh prapt ho sake jo ki hai Krishna Prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Akyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manoheshtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahayam Dadati Swapadantikam. Vande Aham Shri Guru Shri Uttapatha Kamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sadrijatam Sahakanarakunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesh Gopika Kanta Shiradha Kanta Namostute Tapta Kanchanam Gaurangi Shirade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadharam Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho. Chapter 8, Verse Number 9. Atyant hi mahatvapurna aur sundar shlok hai. Kripya mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. भगवान कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरिया समनुस्मरेत्या सर्वस्य धातारम अचिंत्यरूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् कविम् पुराणम् अनुशासितारम् अरोरणीयासमनुस्मरेत्य सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् कविम् पुराणम् अनुशासितारम् अरोरणीयासमनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् कविम् पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् शब्दात्
कविम्। कविम का मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता है। पुराणम यानी प्राचीन, जो बहुत ही पुरातन हो, यानी सबसे पुराना। और अनुशासितारम का मतलब होता है नियंता, जो कंट्रोलर है वो। अणु यानी अणु की तुलना में एकदम छोटे से छोटा अणु, एक एटम होता है उसको बोलते हैं, जो बिल्कुल छोटी इकाई होती है अणु। अणीयासम यानी उस छोटे से छोटी इकाई से भी छोटा, इतना छोटा। अनुस्मरेध्य, अनुस्मरेध का मतलब होता है सदैव सोचता है। क्या सोचता है? कि वो भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, प्राचीन है, पुरातन है, नियंता है और लघुतम से भी लघुतर है, ऐसा सोचता। यह और जो सर्वस्य धातारम, सर्वस्य का मतलब होता है संसार में जो कुछ भी है, इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, उसका मतलब होता है सबको मिलाकर उसको बोलते हैं सर्वस्य। और धातारम का मतलब होता है पालक, यानी संसार में जो कुछ भी है वो सबका पालन करने वाला वो भगवान है। अचिंत्य रूपम, उनका जो स्वरूप है वो अकल्पनीय है, मतलब हम भौतिक बुद्धि से उनको माप नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान है। उनको समझना, उनको देखना, उनको उनके विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना वो हमारी मंद बुद्धि जो है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अचिंत्य है। अचिंत्य माना कि हम उनका चिंतन नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, वो अचिंत्य है। लेकिन अब क्योंकि चिंतन करना है तो ये सारी विधि बता रहे हैं कैसे चिंतन करना है, कि वो कविम है, सर्वज्ञ है, प्राचीन है और नियंता है, लघुतर से भी लघुतम है और सदैव सारी जितनी भी भौतिक सर्वस्य दातारम जो कुछ भी है उनके दातार है। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, आदित्य कहते सूर्य को, सूर्य के समान प्रकाशमान है। और तमसा परस्तात, तमसा मतलब अंधकार से, परस्तात मतलब दिव्य है। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे अर्थात दिव्य है। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वह निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप से यहाँ पर वर्णित है। पहली बात तो यहाँ है कि भगवान पुरुष हैं, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में कहा गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीव आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे अणु के भी हृदय में प्रविष्ट कर सकते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु के में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर सकते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत ही सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंखुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 9। इससे पहले जो श्लोक हमने पढ़ा कल, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन्। के अभ्यास योग युक्तेन, कि आपको अभ्यास करना है, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने अनुवाद में कहा, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान लगता। अब यहाँ पर साफ साफ बताया है परमम पुरुषम दिव्यम कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है, शून्य नहीं है, बल्कि परम पुरुष है, व्यक्ति है। तो उनका चिंतन करना है, उनका ध्यान लगाना है और उसके लिए अभ्यास करना है। और इस तरह से वो कहते हैं याति पार्थानु चिंतन, वो हमेशा चिंतन करता रहता है, उसे करना है और इस तरह से क्या होगा, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे ये जो आज का जो श्लोक है उसमें क्या लिखा, अचिंत्य रूपम, भगवान का स्वरूप अचिंत्य है। जैसे सेकंड लाइन की सेंटर में देखिए, सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम। अब भगवान जब अचिंत्य रूप है तो फिर उनका चिंतन कैसे किया जाए, प्रश्न उठता है ना कि अचिंत्य का चिंतन कैसे करा जाए। तो अब चिंतन करना आवश्यक है क्योंकि पहले ही भगवान ने कहा कि अंत का दसवां सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध, आपको चिंतन करना है, स्मरण करना है मेरा और उसके लिए अभ्यास करना है, वो बताया आठवीं श्लोक में। अब ऐसे अचिंत्य रूप का चिंतन किस प्रकार से करना है वो आज बता रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 9 में। भगवान कहते हैं कविम, कविम का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। वास्तव में भक्तों, संसार की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से छुपी हुई है। भगवान सर्वज्ञ है, कविम है और वो परमात्मा के हृदय में समस्त जीवों के, परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में व्याप्त है और जीव जैसी भी जीव की गतिविधियां हैं सब कुछ भगवान जानते हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं तो हर कुछ भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान 7.26 में बताते हैं वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मम तु वेदन कश्चन। मैं श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में घटित होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्री प्रभुपाद जिसके विषय में बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि संसार में एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति के विषय में पता होता है कि मेरे शरीर में क्या है, मेरे घर में क्या है, मेरी संपत्ति में क्या है, ये पता होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, पूरे उसके कंट्री को उसका पता होता है कि किस व्यक्ति के पास क्या है वगैरह, पूरे कंट्री का उसके पास लिखा होता है। लेकिन पूरे विश्व को कोई नहीं जानता, कोई ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जो पूरे विश्व के बारे में जानता है, लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे। भगवान को सब कुछ पता है, इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ यानी कविम, जो पहला शब्द है कविम, और कविम के बाद कैसे है वो, पुरातन। पुरातन का मतलब होता है बहुत पुराने, यानी कि जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं आद्यम पुराण पुरुषम नवयावनम च। आद्यम का मतलब होता है वो आदि है, आदि यानी जिसका कोई कारण नहीं है, वो सर्व कारण कारणम, जो कुछ भी संसार में है उन सब का कारण भगवान है। तो कोई पूछेगा ना भगवान का कारण कौन है, भगवान का कोई कारण नहीं है, सर्व कारण कारणम वही है, भगवान स्वतः है और भगवान सबसे पहले आदि पुरुष है। इसे यहाँ पर कहा गया पुरातन। हम जानते हैं कि भगवान जो है वो सबसे पहले, लेकिन कभी भी बूढ़े नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं तो फिर उनका शरीर भी बूढ़ा नहीं। भगवान का शरीर दिव्य होता है, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हो रहा है तो भगवान की आयु जो है 108 वर्ष से भी अधिक थी, लेकिन उस समय में भगवान नव यौवन की तरह दिखते थे। इसी ब्रह्मा जी कहते हैं आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो सदैव नवीन दिखते हैं। कभी भी हमने भगवान का चित्र नहीं देखा ऐसा जिसमें भगवान के बाल सफेद हो गए हों, दांत टूट गए हों या बहुत पुराने बूढ़े हो गए हों। भले ही वो कितने ही पुरातन हैं, मगर वो नवीन युवक की तरह दिखते हैं। तो हमें भगवान का ध्यान करने का यहाँ पर बता रहे हैं भगवान स्वयं कि भगवान का ध्यान किस तरह करना चाहिए, कि वो सर्वज्ञ हैं, यानी वो सब कुछ जानते हैं, वो पुरातन हैं और वो आगे कविम पुराणम अनुशासितारम। अनुशासितारम का मतलब होता है नियंता। नियंता माना कंट्रोलर। इस संसार में हम देखते हैं कि हर कोई कंट्रोलर बनना चाहता है। सब समझते हैं कि मैं वस्तुओं को कंट्रोल करूं, मैं करूं, लेकिन वास्तव में यदि इस भौतिक जगत को या आध्यात्मिक जगत को कोई कंट्रोल करने वाला है तो वो केवल और केवल भगवान है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं। वे इस भौतिक प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में कार्य कराते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है उसके लिए भगवान कहते हैं 9.10 में, महाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर हेतु नाने न कौनते जगत परिवर्तित है। यहाँ तक कि भौतिक प्रकृति को यदि हम आगे जाएं, जो देवी देवता हैं, वो सारे देवी देवता भी भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञाओं का पालन करके ही संसार को रचते हैं। शिव जी भगवान की आज्ञा से इस संसार का क्षय करते हैं। तो भगवान ही समस्त जीवों के, समस्त भौतिक सृष्टियों के, समस्त आध्यात्मिक जगतों के नियंता हैं। भगवान कहते हैं 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता। कि वास्तव में जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी, नियंता केवल मैं ही हूँ। और जो मुझे इस प्रकार से जानते हैं बुधा, वो बुद्धिमान है और भाव समन्विता, क्योंकि वो जान जाते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। कौन? जो भगवान को परम नियंता मानते हैं। आगे कविम पुराणम अनुशासितारम अरुण रियास। अरुण कहते हैं बहुत छोटा, लघुतम से, और अणीया माना उससे भी छोटा। जो संसार में छोटी से छोटी वस्तु है, अर्थात छोटे से छोटा जो कण है, अणु है, उससे भी छोटे। उससे छोटे कैसे? जैसे एक छोटा सा, सबसे छोटा समझो, अगर हम कोई जीव बोले तो उस जीव के अंदर भी हृदय है, हृदय के अंदर आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा। अब वो जीव इतना छोटा है पहले से ही, आत्मा का नाप हमें पता क्या? बालक रेशतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, कि एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का नाप है। अब वो हृदय के अंदर रह रहा है, एकदम अणु का हृदय जो होता है, एकदम छोटे से छोटा जो एटम होता है, उतना उसके भी हृदय में वो आत्मा है और उसके हृदय में भी, अणु के हृदय में भी परमात्मा है। तो कितना छोटा, मतलब उस अणु से भी छोटा, लघुतम से भी लघुतर। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि ऐसे कहते हैं अणु रेणिया समान समय, कि उसको ये सोच, वो ये भक्त जो है वो जो चिंतन करता है भगवान का, वो ये सोचता है कि भगवान छोटे से छोटा है, अचिंत्य है, उसको चिंतन करना संभव नहीं है, और इतना छोटे से छोटा होता है। और लेकिन ऐसा नहीं, अब देखो संसार में क्या होता है, जो छोटे होते हैं वो केवल छोटा सा कार्य कर सकते हैं। जैसे चोंटी होती है, उसके ऊपर अगर हम बहुत बड़ा बिस्तर रखते हैं तो क्या होगा, दब के मर जाएगी। परंतु भगवान भले छोटे से छोटे हैं, लेकिन वो कार्य कैसे करते हैं वो आगे वाली लाइन में बताते हैं। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप, सर्वस्य धातारम यानी कि वो प्रत्येक का पालन करते हैं संसार में, भले अब वो अणु हैं, लघुतम से भी लघुतर हैं, छोटे से छोटे हैं, लेकिन फिर भी सर्वस्य धातारम समस्त जीवों का पालन करते हैं। हम देखते हैं इस संसार में कितने बड़े बड़े जीव हैं। हाथी को अगर हम देखें तो एक हाथी एक दिन में 40 किलो घास खाता है, एक मन घास खाता है, और एक चींटी जो होती है छोटी सी वो कितना खाती है, एक आध कण खाती है। लेकिन भगवान सबका पालन करते हैं सर्वस्य दातारम, वो भले छोटे 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 से छोटे हैं लेकिन वो फिर भी सबका पालन करते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान की आश्रय के बगैर कुछ अपने लिए एक कण भी जीव नहीं बना सकता ऐसा जिससे वो जी सके। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त किए बगैर जी सके। हमें जीने के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं, जैसे वायु, जल, अनाज, वो सब भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। संसार में जो कुछ भी है प्रत्येक जीव का पालन करने वाले वो भगवान ही है, और वो क्योंकि सर्वज्ञ हैं, कविम हैं, तो क्योंकि उन्हें पता है भगवान को कि पिछले जन्मों के अनुसार हमने कैसे कैसे कार्य किए हैं और उन कार्यों के अनुसार हमें कैसा कैसा रिजल्ट मिलना है, तो वो सारी हमारे अपने कर्मों का संचित फल हमें प्रदान करते हैं। लेकिन जब तक हम जीते हैं इस संसार में भगवान की कृपा पर आधारित होते हैं, प्रत्येक का भगवान पालन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, कि भगवान का रूप इतना अचिंत्य है, माना भौतिक कल्पना से बिल्कुल परे है। हम अपनी इस भौतिक बुद्धि से भगवान के स्वरूप को ना इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे अब छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े कार्य करते हैं, वो सबसे पुराने हैं फिर भी नवीन लगते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले हैं। तो इस भौतिक बुद्धि से इसको समझना भगवान का मापदंड नहीं, हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि वे क्या हैं, अचिंत्य रूपम, उनका स्वरूप समझने जैसा नहीं है। पुराणों में कथा आती है कि एक ब्राह्मण था और एक मोची था, दोनों बहुत गहरे मित्र थे और रोज सोचते थे कि पता नहीं कब हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, भगवान का सहयोग प्राप्त होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, हम इस योग्य बनेंगे कभी। तो एक बार नारद मुनि से उनकी भेंट हुई। नारद मुनि को बोला, क्योंकि आप तो हर जगह आते जाते हो, भगवान के पास भी आते हो, आप कभी भगवान से पूछ के आओ ना कि क्या हमें कब उनसे, मतलब हमें उनका सानिध्य कब मिलेगा, हम कब उनसे भेंट कर सकेंगे, कब उनसे मिल सकेंगे। तब भगवान से जाके नारद मुनि ने पूछा, तो भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण है ना उसको बोलो कि अभी तो तुम्हें 100 जन्म और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि ने कहा, 100 जन्म ब्राह्मण को, तो फिर मोची को कितना। तब भगवान ने कहा, मोची को कहना कि वो इसी जन्म के अंत में मुझे प्राप्त कर लेगा। तब नारद मुनि ने बहुत आश्चर्य किया, लेकिन अब भगवान ने कह दिया, उन्हें जाके बताना था, लेकिन भगवान ने कहा, रुको नारद, वो जो पूछे कि जब मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि मैं कब, वो कब मुझे प्राप्त करेंगे, तो वो भगवान उस समय क्या कर रहे थे, तो आप कहना कि भगवान उस समय सुई का जो छेद होता है ना उसमें से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद मुनि और भी आश्चर्य में हो गए, लेकिन अब भगवान ने कह दिया, उन्हें तो खाली मैसेज देना था। तो जाके कहा मोची और ब्राह्मण को कि भगवान ने कहा है आपके लिए, ब्राह्मण को जाके पहले कहा कि भगवान ने आपके लिए कहा है कि आपको 100 जन्म और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया कि नारद मुनि आप ये कैसे बात कर रहे हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे आप ऐसे बोल रहे हो कि 100 जन्म तक मुझे ना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप भगवान से मिल कर आए, आप मुझे बताओ, कोई प्रूफ दो। उस समय भगवान क्या कर रहे थे जिस समय आप ना ये भगवान से प्रश्न किया। तब नारद मुनि ने कहा कि उस समय भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तब तो ब्राह्मण ने कहा, देखा, बोला था ना मैंने तुम झूठ बोल रहे हो, कभी कोई सुई की नोक से भी हाथी को निकाल सकता है? तुम तो भगवान से मिलने गए नहीं हो, भगवान मुझे कोई सौ जन्म प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपने मनमानी तरीके से मुझे बता रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भगवान ने ना ऐसा कहा हो, क्योंकि तुमने तो भगवान से मिले ही नहीं हो, भगवान कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, सुई की नोक से छेद से कैसे है ना हाथी को निकाल सकते हैं। तब ब्राह्मण नारद मुनि ने कहा, मैं तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको विश्वास करते हो या नहीं करते हो, मैं मोची को जाके बताता हूँ। तो मोची को जाके कहा, मोची ने पूछा, भगवान से मिले नारद मुनि? तो बोला हाँ मिला। तो बोला भगवान ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया? बोला हाँ, भगवान ने कहा कि आप इसी जन्म के अंत में मुझे प्राप्त कर लोगे। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। तो बोला नारद मुनि, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मैं आपसे भेंट हुई, आप भगवान का साक्षात दर्शन करके आए हैं। मुझे बताइए ना, जिस समय आप भगवान से मिले उस समय भगवान क्या कर रहे थे? तब नारद मुनि ने उस मूर्छि को कहा कि उस समय भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तब तो वो मूर्छि और भी ज्यादा आनंदित हुआ, वो नृत्य करने लगा, बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगा, भगवान का गुणगान करने लगा। तब नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है इस बात पर? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, सुई की नोक से भला कोई हाथी निकालता है, आपको इस बात पर विश्वास हो रहा है? तब उस मूर्छि ने कहा कि जो भगवान एक छोटे से बीज के अंदर से इतने विशाल वृक्ष को निकाल सकते, जैसे बीज कितना छोटा होता है, उसको जब हम धरती में डालते हैं तो भगवान जो है, भगवान कहते हैं कि मैं बीज हूँ, बीजम माम सर्वभूतानां। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उस बीज के अंदर से बहुत बड़ा विशाल वृक्ष निकालते हैं। तो जब भगवान ऐसा कर सकते हैं तो भगवान सुई की नोक से हाथी को कैसे निकाल सकते हैं? भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, वो हमारी इस भौतिक बुद्धि से परे, हम भौतिक बुद्धि से भगवान को नाप नहीं सकते। जैसे एक फ्रॉग था, एक जो ना फ्रॉग होता है मेंढक, उसको किसी ने कहा कि जो समुद्र है ना वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अब फ्रॉग की बुद्धि कितनी होगी, उसको समुद्र तो उस बुद्धि के अंदर नहीं आ सकता। तो फिर भी अपने भौतिक, अपनी छोटी इंद्रियों से, जो बिल्कुल संकुच इंद्रियां हैं, जो कि इतना ज्ञान नहीं है समुद्र के विषय में, वो फिर भी अपने आप को इतना महान समझ जाता, समुद्र को नापने लगा था अपनी इंद्रियों से, उसका है ना सोचने लगा था। वो क्या कर रहा था, अपने पेट को फुला रहा था कि समुद्र इतना बड़ा है। फिर बोला नहीं, इससे तो बहुत बड़ा है। फिर और भी फुलाया, बोला इतना बड़ा है। बोला नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। फिर और भी फुलाया, बोला इतना बड़ा है। बोला नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। और भी ज्यादा फुलाया तो क्या हुआ, उसका पेट ही फट गया। यानी कि हमारी जो भौतिक बुद्धि है उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को नाप सके। तो यहाँ पर इसने कहा कि अचिंत्य रूपम, भगवान का रूप अचिंत्य है। भगवान जो कार्य करते हैं वो हमारी भौतिक बुद्धि, हमारी ये जो छोटी सी बुद्धि है उसमें वो समा ही नहीं सकते। अब भगवान इतने छोटे हैं, 6 दिन के हैं और इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मारते हैं, तो कोई हम ऐसा सोच सकते हैं कि छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 6 दिन का है, जो अभी तो चलना भी सीखा नहीं है, ना बात करना सीखा है, वो भला कैसे इतने बड़े राक्षस को मार सकता है? भगवान छोटे से हैं और वो बहुत बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं, जो कई सालों से उस नंद बाबा के आंगन में रखे हुए। क्या बच्चा भला वृक्ष को कैसे गिरा सकता है? छोटे से कृष्ण हैं और वो इतने बड़े कालिया के फन पर नृत्य करते हैं। तो भगवान जब छोटे से होते हैं, एक बार यशोदा मैया उनको, वो आंगन में खेल रहे होते हैं तो मट्टी खा लेते हैं, और यशोदा मैया उनको बोलती है, कहा ना तूने मट्टी खाई? कृष्णा बोलते, नहीं मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। बोला खोलो मुंह, दिखाओ मुझे। जब कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर होता है। इवन यहाँ तक है यशोदा माई और स्वयं कृष्ण को भी वो देखती हैं। तो भगवान का स्वरूप जो है, भगवान के कार्य जो है, भगवान की लीलाएं जो है, वो हमारी इस भौतिक बुद्धि से समझ नहीं आएंगी। इसलिए क्या है यहाँ पे बताया कि सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, वो समस्त जीवों का पालन करते हैं लेकिन अचिंत्य हैं और कैसे हैं, आदित्य वर्णम। श्रील प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में अचिंत्य रूपम का बहुत ही सुंदर बताया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है, वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में निगरणीय है, तो फिर हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। संसार के बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों, बड़े से बड़े फिलोसोफर हों, अभी तक तो भौतिक जगत के विषय में ही पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं, तो भला अपनी इस भौतिक बुद्धि से वो भगवान को कैसे समझ सकते हैं। कि भगवान तो क्योंकि इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे हैं, तो अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क नीति शास्त्र तथा दर्शन चिंतन छू भी नहीं सकता। चाहे हम कितने ही तर्क करें, कोई कह सकता है भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे ऐसे कर सकता है, क्योंकि भगवान है। तो भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं। इसे भगवान को नहीं समझना है, भगवान का चिंतन करना है। भगवान को समझने के लिए वो अचिंत्य है, हम कैसे समझेंगे भगवान को, चिंतन करना है कैसा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहे। और कैसे भगवान का चिंतन करें, अत्यंत ही सरल उपाय है कि वेदों श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार करें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। कि पालन करना है हमें भगवान ने जो जो शास्त्रों ने जो आदेश दिया है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की शरण में जाकर भगवान को समर्पित करना है अपने जीवन को। और आगे कहा आदित्य वर्णम, वो सूर्य की भांति तेजवान है। वास्तव में सूर्य जो है वो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रमाण है कि सूर्य ज्ञान और अंधकार तमसा अंधकार को कहा गया, अज्ञानता को कहा गया। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, वो सूर्य की भांति प्रकाशमान है और अंधकार से बिल्कुल परे है, जिसे कहा जाता है श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, याहार कृष्ण ताहार नाही माया अधिकार। जहाँ पर कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे, के जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर लेता है। अब क्योंकि भगवान माया से परे हैं, भगवान अंधकार से परे हैं, वो सूर्य की भांति चमक आदित्य वर्णम है, वो सूर्य की भांति प्रकाशमान है और ये माया क्या है, अंधकार है। तो भगवान कहते हैं वैसे तो इस माया को पार करना बहुत कठिन है। 7.14 में भगवान ने कहा दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे, इस भौतिक जगत से इस मोह माया से पार करने का केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान की शरण जाए। और भगवान की शरण में जाने का यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुगम तरीका बताया है। क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है। कैसे करना है, भगवान सर्वस्य है, भगवान सर्वज्ञ है और पुरातन है, नियंता है, लघुतर से लघुतम है, प्रत्येक व्यक्ति का पालन करने वाले हैं और समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं, नित्य हैं, पुरुष हैं। भगवान नित्यो नित्यानाम अचिंत्य तथा नित्य, नित्य का मतलब होता है कि वो स्टार्ट से हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता है। हम भी नित्य हैं, जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है, परंतु अंतर क्या है कि जीव जो है वो आश्रित है और भगवान जो है वो आश्रय है। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान इकलौते ही नियंता हैं। इसे यहाँ पर अंत में कहा कि आदित्य वर्णम, श्री प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं तथा नित्य पुरुष के रूप में हैं, नित्य हैं और पुरुष के रूप में हैं। जैसे बाइबल में एक बात लिखी गई है कि मैन इज मेड इन मैन्स इमेज, कि भगवान जो है, मनुष्य जो है वो भगवान के जैसा आकार लेकर संसार में आया है। तो इसका मतलब है भगवान, अब जैसे हमारा स्वरूप है, हमारे पिताजी का स्वरूप है, इस भौतिक जगत का स्वरूप है, उनके पिताजी का स्वरूप है, तो भगवान भी निराकार नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने साफ साफ कहा है कि इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है और सबसे प्रमुख बात यह है कि भगवान निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कर भी कैसे सकता है? तो इसलिए भगवान ने बताया यहाँ पर कि मेरा चिंतन करो, तो ये अचिंत्य है, तो इसका चिंतन कैसे करना है? उसका मार्ग यहाँ पर बताया, यहाँ पर कि शुद्ध प्रेम के साथ, शुद्ध भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान का चिंतन करना है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं शास्त्रों में, उनके अनुसार भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं और भगवान ने जो जो बातें कही हैं उनको श्रवण करना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, नियम को फॉलो करेंगे तो उससे होगा क्या? मन शुद्ध हो जाएगा, है ना। चिंतन करने से हृदय पवित्र होगा और शुद्ध मन से क्या होगा? स्मरण करना सुगम हो जाएगा। और स्मरण करके क्या होगा? अब देखो, मन जो है वो कंट्रोल में करना बहुत कठिन है, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा कि आप कहते हो मन को कंट्रोल में करो, परंतु चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् यस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। तुम कहते हो मन को वश में करो, परंतु मन को वश में करना तो इतना कठिन है जितना वायु को वश में करना भी नहीं है। वैसे तो वायु को वश में करना भी बहुत कठिन है, लेकिन अर्जुन बोलता है मन तो उसे, अब अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि इतना अपने मन को कंट्रोल कर चुका है, वो भी यदि ऐसा कह रहा है, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति जो जरा जरा सी चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं और भगवान को बुला देते हैं, तो उसके लिए मन को कंट्रोल करना कितना कठिन होगा। तो इससे भगवान ने अत्यंत सुंदर विधि बताई है कि हर एक समय आपको मेरा ध्यान करना है, हर एक वस्तु को देखकर, संपूर्ण जीवों को देखकर, भौतिक प्रकृति को देखकर, मुझे ही सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से लघुतर भौतिक दृष्टि से पढ़े और अचिंत्य मानकर मेरा चिंतन करना। इससे क्या होगा? आपका मन मुझ में लगेगा, और यदि मन मुझ में लग गया तो क्या? मेरा स्मरण होने लगेगा, और यदि मेरा स्मरण होने लगा तो फिर तुम्हारे लिए अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो भगवान अभी उसी ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रयाण काले च कथम, कि मृत्यु के समय मेरा स्मरण करने के लिए तुम्हें अभ्यास करना है, और कैसे करना है? हर समय हर वस्तु में आपको मेरा दर्शन करना है, और इसे करते 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 जब सदैव मेरा चिंतन करोगे तो मृत्यु के समय भी आप मुझे याद कर सकोगे और अवश्य ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके मेरे धाम में प्रवेश कर सकोगे। तो यहाँ तक भगवान ने ये बताया कि मृत्यु के समय जिस जिसका चिंतन करेंगे तो हमें उसी, जिस जिसका स्मरण करेंगे वही प्राप्त होगा। और फिर भगवान ने कहा इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तो हर समय क्या करना है? मुझे स्मरण करना है, और उसके लिए आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास करने का तरीका बताया। अब आगे भगवान हमें क्या बताएंगे? श्लोक नंबर 10, 11, 12 और 13, इन चार श्लोकों में भगवान हमें क्या बताएंगे कि भगवान को स्मरण करने के दो तरीके बताएंगे। अब भगवान एक शुद्ध भक्ति के द्वारा, एक योग मिश्र भक्ति के द्वारा। देखो भक्ति, अब यहाँ पर क्या है, अर्जुन का प्रश्न यह है कि प्रयाण काले च कथम ये योसी नियत आत्मा भी, जो नियत आत्मा भी है जो भक्ति में लगे हुए हैं। अब हर कोई शुद्ध भक्ति नहीं करता है, हर कोई अलग अलग तरीके से भक्ति करता है, तो हर कोई अलग अलग तरीके से भगवान को स्मरण करता है, तो भगवान जो है दो चीजों को यहाँ पर तुलना करके बताएंगे कि शुद्ध भक्त कैसे चिंतन करता है और योग मिश्र भक्त कैसे चिंतन करता है। तो इसको हम बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही भगवान ने अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि भगवत गीता किसी भी मार्ग को ठुकराती नहीं है बल्कि हर एक मार्ग के विषय में बताती है। और फिर अंत में भगवान निर्णय देते हैं कि देखो बहुत सारे मार्ग हैं लेकिन सबसे सुगम मार्ग क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मन से मुझे चिंतन करो और मुझे नमस्कार करो, मामे वैशति सत्यम तब गति जाने की उसी में, और इस तरह जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, और मैं क्योंकि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। तो ये सुगम रास्ता है वो एक अलग बात है, लेकिन और भी रास्ते हैं, उनके विषय में भगवान यहाँ पर हमें चार श्लोकों में पहले बताएंगे योग मिश्र भक्ति के बाद, और उसके बाद 15, 16 और 17 में भगवान श्री कृष्ण 14, 15 और 16 में भगवान जो है वो शुद्ध भक्ति के विषय में बताएंगे, और उसके आगे भगवान वापस से योग मिश्र भक्त जो है अंत समय में भगवान को कैसे स्मरण करता है और शुद्ध भक्त कैसे स्मरण करता है उसकी तुलनात्मक दृष्टि से बताएंगे, और अंत में भगवान पुनः शुद्ध भक्ति के विषय में बताएंगे। तो इसको हमें अच्छे से समझने का प्रयास करना है, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।